ओम शांति। उषा बेन जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सभी एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं, पॉलिटिशियन विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आपके प्रोग्राम अवेकनिंग टीवी और पीस ऑफ माइंड टीवी में प्रसारित होते रहते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप कोर्स आपने भारत की प्रतिष्ठित कंपनियों में कराया है और गीता ज्ञान का सत्य आध्यात्मिक रहस्य पर भी आपके प्रवचन लगभग पूरे भारतवर्ष में होते रहे हैं, विदेशों में भी कई स्थानों पर हुए हैं। आपको जाम्बिया अफ्रीका से ज्ञान मिला लगभग 44 साल पहले और फिर मुंबई में और हैदराबाद में आपने प्रारंभ में सेवाएं दी। 93 से आप हेडक्वार्टर में ही समर्पित होकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विदेशों में मैं समझती हूं पांचों ही महाद्वीपों में आपने अपने ज्ञान से अनेकों आत्माओं के जीवन में परिवर्तन लाया है। आप ज्ञान के गुह्य राजों को बहुत सरल भाषा में स्पष्ट करते हैं जो सभी समझ पाते हैं। बहुत प्रभावशाली वक्ता हैं और अथक सेवाधारी हैं। दृढ़ता से सफलता पाना ये आपकी विशेषता है। तो अभी क्लास का विषय है परमात्मा दुआएं सुरक्षा का आधार कैसे हैं, वो हमें स्पष्ट करेंगे।
ओम शांति। मधुबन में भट्टी करने का चांस मिलता है, सबसे बड़ा भाग्य है ना? और वो भी ऐसे लॉकडाउन के समय में, जब ऐसे लॉटरी लग जाए तो कितना खुशी का ठिकाना नहीं रहता है ना? महान भाग्यशाली है, क्योंकि आज कई लोग देश विदेश के अंदर मधुबन में आने के लिए तड़पते हैं। काफी समय हो गया कोई आया ही नहीं, और उसमें अभी 2-3 ग्रुप्स में कुछ एक आत्माओं को चांस मिला, तो क्या कहेंगे? भगवान के चुने हुए रत्नों को ये चांस मिला है, ये लॉटरी मिली है। और विशेष बाबा जब यहां लाया है तो कुछ ऐसा देना चाहता है बाबा, तभी तो लेके आया है ना? अपने आप से आए या बाबा ले आया है? बाबा ले आया है ना? नहीं तो परिवार वाले भी छुट्टी न देवे कि ऐसे समय में कहां जाना है, क्यों जाना है, कहेंगे ना? लेकिन फिर भी आप लोगों को छुट्टी मिल गई, आप आ गए, वो भी दिवाली के दिनों में, तो कितनी अच्छी बात है ना? बाकी जो आज का विषय है कि परमात्मा याद और दुआएं सुरक्षा कवच है, और यही सुरक्षा कवच तो इस वक्त चाहिए, क्योंकि मुख्य बात है कि जीवन में अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की परिस्थितियां, अनेक प्रकार के हलचल के कारण बनते रहेंगे, और ऐसे समय में ही हमें सुरक्षा कवच की आवश्यकता होती है। अच्छे दिन हो तो किसी को सुरक्षा की जरूरत नहीं होती है, लेकिन विपरीत समय हो तभी तो सुरक्षा चाहिए। जैसे दुनिया के अंदर भी किसी के ऊपर कोई महान आपदा आ जाए और ऐसे समय में उसको सुरक्षा प्राप्त हो जाए तो कितने अंदर से ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, उस आत्मा का धन्यवाद करेंगे कि आपने सचमुच मुझे समय पर आकर के ये सहयोग दिया, ये चीज जो आवश्यकता थी उसकी मुझे प्राप्ति कराई। तो अंदर दिल गदगद होने लगता है, परंतु हम ब्राह्मणों के लिए बाबा ने यही कहा कि दूसरे भी मदद कर नहीं सकते। ये समय ऐसा है कि जहां हर इंसान को खुद की मदद खुद ही करना है, बाहर वाले चाहे, परिवार वाले चाहे, तो भी कभी कभी नहीं कर सकता है। ऐसे महामारी का किसने सोचा था? और अभी तो बाबा कहते हैं ये शुरुआत है, अभी तो आगे और दुख के पहाड़, मुरली में आता है ना, और दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। तो हमारे पास आंतरिक कितना बल चाहिए, कितनी शक्ति चाहिए ताकि हम कम से कम अपनी सुरक्षा तो कर सके, दूसरों से अपेक्षा नहीं रख सकते हैं ये समय में, क्योंकि हर एक के सामने प्रॉब्लम है, हर एक के सामने परिस्थिति है, चाहना रखते हुए भी नहीं आ सकेंगे। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे आप अपने अंदर वो शक्ति को जमा करो जो आपकी सुरक्षा खुद करे। और सचमुच में दुनिया में भी देखा जाता है कि कभी किसी के सामने मानो के रास्ते पर जा रहे हो और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो, गाड़ी को देखकर लगता है कि इसमें कोई बचा नहीं होगा, परंतु जो अंदर थे उसको एक खरोच तक नहीं आती है, वो सीधा सादे जैसे थे वैसे ही बाहर निकलते हैं, तो दुनिया के लोग भी क्या कहेंगे? दुआओं ने बचाया है कि इस व्यक्ति के सामने इतनी बड़ी परीक्षा थी, लेकिन उसके जीवन में जो दुआएं थी वो दुआओं ने आकर के जैसे उसको सुरक्षित कर लिया, सेफ कर लिया। तो दुआएं कैसे प्राप्त करें? क्योंकि अभी जैसे आदरणीय दादी जानकी हमेशा कहती थी कि ये सीजन है दुआएं देने की, दुआएं लेने की। जिस तरह सीजन में अगर बीज बो दिया जाए तो बाद में पछतावा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि फसल तैयार होती है। लेकिन जिसने सीजन के समय ही आलस अलबेलेपन में आकर इधर उधर करते रहे, बीज बोया ही नहीं, तो बाकी सब फल खा रहे हैं और वो व्यक्ति को क्या होता है, अरे ये क्या हो गया, उस समय मैं नाहक सोया रहा, आलस करता रहा, अगर उस समय मैंने बीज बो दिए होते तो आज मैं भी इतना सुंदर फल अनुभव करता। तो जैसे उसका गोदाम भर जाता है फल से, उसका गोदाम भर जाता है, ठीक इसी तरह ये सीजन है दुआएं देने की, दुआएं लेने की। दुआएं उनको मिलती है, किनको मिलती है? कुछ बातों के आधार से दुआएं प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात कि जिसने सदा श्रेष्ठ कर्म किए, किसी को सुख देने का कार्य किया है, किसी को दिल से खुशी देने का कार्य किया है, तो अपने आप जिसको खुशी मिली, जिसको उस कर्म से सुख मिला, अपने आप उनके अंदर से जब निकलता है थैंक्स, शुक्रिया, ये शुक्रिया दुआ है हमारे लिए, और इसीलिए ये दुआएं जमा करते जाओ। इतना सुख देने वाला कार्य करे, भगवान ने हमें शक्ति दी है, विशेषताएं दी है, योग्यताएं दी है, उन योग्यताओं के आधार से, उन शक्तियों के आधार से जितना हम श्रेष्ठ कर्म में उसको लगाते जाते हैं, उतना सर्व की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। ये दुआएं जमा करते जाओ, क्योंकि अंतिम जब पेपर आने हैं, अभी वो तो बाकी है। जैसे आप सभी ने भी अनुभव किया कि दुनिया में जैसे ये महामारी आई, लेकिन किसी किसी परिवार को ये महामारी छू नहीं सकी, नजदीक नहीं आ सकी, है ना? क्यों? क्योंकि उस समय जैसे ये सुरक्षा कवच परिवार के ऊपर कहो या अपने ऊपर कहो, सहजता से फैल जाता है, जो हमें हर रीति से सुरक्षित रखता है। दुनिया चिल्ला रही है, परेशान हो रही है, व्यर्थ और नकारात्मक विचार चला रहे हैं, कहीं हमें कोरोना न हो जाए, कहीं हमें न हो जाए, और उनको हो जाता है। और कहीं परिवार निश्चिंत है हर रीति से। ये दुआओं की शक्ति ही हमें निश्चिंत रखता है, निर्संकल्प रखता है हमें। तो इसीलिए कहा, जितना हमने अनेकों को सुख दिया है, खुशी दी है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए हैं, तो जैसे उनकी दुआएं मेरे लिए जैसे एक प्रभा मंडल का कार्य करता है, ये प्रभा मंडल ही सुरक्षा है, सुरक्षा कवच है, जिसको भेद करके कोई भी कीटाणु उसके अंदर आ नहीं सकता है, नकारात्मक बातें उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, इतना पावरफुल ये सुरक्षा कवच है। दूसरी बात के कई लोगों को हुआ भी, लेकिन मक्खन से बाल निकल गया, जैसे आ गए, ठीक ठाक होकर के वापस आ भी गए, किसने बचाया? और जिनको कोई इतना ज्यादा भी नहीं था, वो शिकार हो गए। ये भी देखा, अनुभव किया कि जो बहुत सीवियर थे वो भी आ गए। बीच में केस सुना, 90 साल की एक बूढ़ी माता जी, उसको हो गया, आईसीयू में भर्ती किया, लेकिन आ गई, खुशी खुशी से वापस आ भी गई घर में। और जो कम उम्र वाले, जिनको इतना ज्यादा नहीं था, वो शिकार बन गए। कहने का भावार्थ ये है कि हमारे चारों ओर ये जितना पावरफुल सकारात्मकता का, सकारात्मक ऊर्जा का ये कवच होगा, जितना ये प्रभा मंडल हमारा मोटा होगा कि कुछ भी हो जाए, जो होगा उसमें कल्याण ही होगा, ऐसे सकारात्मक संकल्प करते हुए जो आगे बढ़ते हैं, उसको कभी भी कोई भी बीमारी क्या, कोई भी कीटाणु क्या, उसको छू नहीं सकता है ना? इसलिए दुआएं बहुत जरूरी है। दूसरी बात, दुआएं किनको मिलती है? जो समय पर सहयोगी बनते हैं, जो समय पर सहयोगी बन जाते हैं, आवश्यकता के समय पर जिसने किसी को मदद किया, उसके दिल से दुआएं निकलती है उस वक्त। और उसके विपरीत, आवश्यकता के समय किसी का हमने सहारा ये कर लिया, छीन लिया, तो उसके अंदर से बद्दुआएं भी निकलती है। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं आई वेल पर, आई वेल यानी आवश्यकता के समय पर आप किसी के सहयोगी बन जाओ, सहयोग देने का कार्य करो। सहयोगी बहुत बड़ा योगी है। सहयोगी वही बन सकता है जो योगी होता है, जो वियोगी है, रोगी है, भोगी है, वो सहयोगी कभी नहीं बन सकता है। सहयोग जैसे कहते हैं ना, सहयोग देना और लेना ये देवताई गुण है, और सहयोग न देना न लेना ये आसुरी गुण है। कहानी तो मालूम है ना, एक बार इंद्र राजा ने दावत रखी, देवताओं को भी बुलाया, असुरों को भी बुलाया, सबके हाथ बांध दिया और कहा बढ़िया ब्रह्मा भोजन खाओ। असुरों ने क्या किया, उछाल उछाल करके खाने का प्रयत्न किया, सारा गंध फैला दिया और खा भी नहीं सके। वही कंडीशन देवताओं के साथ भी थी, लेकिन देवताओं में आपस में प्यार था तो क्या किया, एक दूसरे को खिलाया, भाई तू मुझे खिलाओ, उसको खिलाओ। देखो इसलिए उसको कहा सहयोग देना और लेना ये देवता ही गुण है, और न देना न लेना क्या कहेंगे उसको, आसुरी गुण कहेंगे ना। तो हम कौन बनने वाले हैं, देवता बनने वाले ना। तो देवता बनने वाले को क्या करना है, सहयोग देना, आवश्यकता के समय पर तो विशेष सहयोगी बने, उसके जैसा बड़ा योगी और कोई नहीं है। और उस वक्त उनको जो परमात्मा की दुआएं प्राप्त होती है, खाली लोगों की नहीं, जिसको मदद किया उसकी नहीं, लेकिन ईश्वर की दुआएं मिलती है, और ईश्वर की दुआओं का हाथ जिसके ऊपर है, सबसे पावरफुल सुरक्षा कवच वही है, सबसे पावरफुल सुरक्षा कवच वही है, जिसको भेद करके कोई भी आ नहीं सकता है। तीसरी बात कि दुआएं किसको मिलती है, तो जिसके अंदर हिम्मत का गुण है। इसलिए कहा जाता हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। तो जिसके पास हिम्मत का गुण है और हिम्मत का कदम आगे बढ़ाते हैं, हिम्मत के आधार से श्रेष्ठ कर्म करते हैं, मुसीबत हो चारों ओर, परीक्षाएं हो, और ऐसे समय पर जो हिम्मत से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, दूसरों के लिए भी, उसको दुआएं सहज प्राप्त होती है। परमात्मा दुआएं सहज प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान के ये महावाक्य है कि हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप, अपने आप उसकी मदद की वर्षा हमारे ऊपर स्वतः होती है, जो जीवन में आगे सहजता से हमें बढ़ाता है। तो इसीलिए बाबा कहे जो हिम्मतवान होते हैं वो परमात्मा दुआओं के अधिकारी होते हैं, और ऐसे जो दुआएं जमा करते जाओ, एक के बाद एक दुआएं जो जमा करना जानता है, तो उसके ऊपर पहाड़ जैसी बातें भी आ जाए तो भी न उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता है, संतुलन में वो चलते हैं, और न ही उसके ऊपर कोई बुरी बातों का प्रभाव पड़ता है, कोई नकारात्मकता का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इसको सुरक्षा कवच कहा, क्योंकि आने वाले समय में चारों ओर से पेपर तो आना है, हलचल होनी है। तो इसीलिए बाबा कहे, तुम बच्चों को अपनी हिम्मत कभी छोड़नी नहीं, हिम्मत के आधार पर कदम बढ़ाते जाना है। चौथी बात, जो बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान रत्न दिए हैं, उन ज्ञान रत्न का सही तरीके से जो प्रयोग करते हैं तो भी परमात्मा दुआओं के अधिकारी, क्योंकि वो सैंपल बन गया। तो जो दूसरों के लिए सैंपल पीस होता है अच्छा ही होता है, जिसके लिए भगवान को नाज हो मेरा सैंपल बच्चा है, तो सैंपल को तो फिर हर जगह प्रदर्शित करेगा ना। दुकानदार क्या करता है, सैंपल पीस जो होता है वो बेचता नहीं है, सैंपल पीस हमेशा शोकेस में रखता है। तो इसी तरह जो सैंपल बच्चे हैं, जो बाबा के हर एक ज्ञान की बात का यथार्थ जीवन के अंदर प्रयोग करता है, दूसरों के लिए उदाहरण मूर्त बनता है, दूसरों के लिए जो प्रेरणा स्रोत बनता है, वो दुआओं के अधिकारी है। परमात्मा दुआएं सहजता से उसको प्राप्त हो जाती है। तो ऐसा सैंपल बनने का भाग्य अगर हमें प्राप्त हो तो बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? हाँ, जिसको देख करके, हाँ ये देखो कितनी बातें इसके पर आती, लेकिन सदा मुस्कुराता चेहरा, हाँ, अविचलित, तो जरूर कोई शक्ति है, समझेंगे ना हर कोई, कितनी बड़ी सेवा हो जाती है। तो ये सैंपल बन गया। तो इसीलिए बाबा कहे, ऐसे सैंपल बच्चे जो बाबा के हैं, जो ज्ञान के एक एक बात का प्रयोग अपने जीवन के अंदर करके उदाहरण मूर्त बनते हैं, प्रेरणा स्रोत बनते हैं दूसरों के लिए भी फॉलो करने के हिसाब से, उसके ऊपर परमात्मा दुआओं की छत्र छाया सदा बनी रहती, उसके ऊपर कभी कोई आंच आ नहीं सकती है, कोई परीक्षा में वो फेल हो नहीं सकता है। दुआएं जिस तरह से स्कूल में बच्चे होते हैं ना, अगर सारे साल में जो यूनिट टेस्ट आती है उसमें जो मार्क्स इकट्ठा करता जाता है, तो फाइनल मार्क्स में अगर थोड़े कम भी हो तो ये ऐड हो जाता है, हो जाता है ना। ठीक इसी तरह जो जीवन में छोटी छोटी बातें आती है, लेकिन उस समय हमने अगर ज्ञान का प्रयोग किया है, क्योंकि बाबा ने अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर एक कर्म के लिए कोई ना कोई श्रीमत जरूर दी है, तो जो श्रीमत का प्रयोग यथार्थ रूप में करते हैं तो वो छोटी छोटी बातों में भी पास होते जाते, तो ये यूनिट टेस्ट के जो मार्क्स है वो फिर फाइनल टेस्ट में भी क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, अभ्यास हो गया ना। तो वो दुआओं के पात्र है, और इसीलिए उनके सामने अगर कोई बात आई भी तो जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है, या जिसको कहा जाता पानी पर लकीर, ठहरती नहीं है, उसका प्रभाव ठहरता नहीं है। दूसरी बात, पांचवा नंबर, छठा नंबर, के हमेशा जैसे कहा परमात्मा, याद भी सुरक्षा कवच है, कि जब भी कोई बात आए तो बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे पहले किसको याद करो, बाबा को याद करो। कुछ भी हुआ, अच्छा है बुरा है जो भी हुआ, पहले किसको याद करें, दुनिया वाले लोगों को, इसको फोन करो उसको फोन करो उसको फोन करो उसको, या बाबा को याद करो। बाबा की याद में बैठ जाओ कि बाबा अब तू रास्ता बता। तो देखो जब पहला नंबर देहधारी को न याद करके बाबा को याद करते हैं तो बाबा क्या करता है, रास्ता बता देता है, बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो। उस समय लगता है पता नहीं सही है या नहीं है, है ना। अभी एक परिवार वाले आकर के मेरे से मिल रहे थे, बहुत बड़ी बात सुनाई उन्होंने। बाबा के दोनों निश्चय बुद्धि बच्चे थे, वो हस्बैंड वाइफ दोनों ही निश्चय बुद्धि, बाबा के पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे थे। तो उन्होंने सुनाया कि वो भाई जो था उसका कोई विदेश में होगा, तो विदेश से पैसे आया, तो जब विदेश से पैसा आया तो अभी गवर्नमेंट को तो पता चलता है, तो गवर्नमेंट ने तो बोला हुआ है जिसका विदेश का पैसा है वो डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर कर देंगे तो उनको कोई हानि नहीं होगी, लेकिन अगर घर पर रेड पड़ेगी और उसमें पकड़ा जाएगा तो बहुत बड़ी पेनल्टी भरनी पड़ती है। तो भाई का जो विदेश का पैसा आया तो उसने सोचा कोई बात नहीं, बैंक में जमा करा देंगे और डिक्लेयर कर देंगे सरकार के सामने कि इतना मेरा पैसा जो था विदेश के बैंक में वो वापस आ गया है। तो घर में ही था, उसने सोचा कि अभी 2-4 दिन में जमा करा दूंगा। तो वो सारा पैसा जो है उसने घर में रखा हुआ था विदेश का। तो कोई आए उसके पास और उसने कहा कि ये विदेश का पैसा है ना, मैं आपको उतना ही रुपया यहां दे देता हूं, ये पैसा आप मुझे दे दो, मुझे बहुत जरूरी है, इसीलिए जो है आप मुझे दे दो और उतना ही पैसा मैं आपको दे देता हूं। तो उसने कहा कि भाई सरकार से लूं, बैंक से लूं या किसी से लूं क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो ये पैसा यहां देना ही है, जमा करना ही है, अगर इसको जरूरी है। उसने फिर जब सोच रहा था ये भाई, तो उसने सोचा कि भाई उसको शायद कम पड़ रहा होगा, तो उसने कहा चलो मैं 5% एक्स्ट्रा दे दूंगा, लेकिन ये पैसा आप मुझे दे दो। तो भाई ने सोचा कि नुकसान क्या है, 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है, सरकार से तो उतना ही मिलेगा। तो उसने कहा कि ठीक है मैं आपको दे देता हूं। फिर जो है उसकी पत्नी सुन रही थी, तो पत्नी कोई इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी को बाबा बार बार टच करे कि नहीं ये सौदे में नहीं जाना है, 5% वो क्यों एक्स्ट्रा दे रहा है, जरूर कुछ होगा उसका अपना दिमाग के हिसाब से। तो उसने उसको इशारा किया कि नहीं, तो भाई ने सोचा कि चलो ठीक है। तो फिर भाई ने कहा अच्छा मैं 2-4 दिन के बाद आपको देता हूं, रख लिया 2-4 दिन के बाद देता हूं। देखो बाबा माताओं की बुद्धि को कभी कभी टच करता है, कैसे टच करता है। तो उसने मना किया, जब मना किया कि भाई 2-4 दिन के बाद थोड़ा रुक जाओ, 2-4 दिन के बाद में मैं दूसरा भी मेरा आ जाएगा उसके बाद आपको इकट्ठा दे दूंगा, ऐसे कोई बहाना करके उसको ये कर दिया। उसके बाद वो भाई चला गया, तो ये पत्नी ने कहा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है कि ये कोई सौदा। तो भाई ने कहा अरे भाई तू बिजनेस की बात को क्या समझे, है ना, तू बिजनेस क्या समझेंगी, 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है, हमें क्या नुकसान हो रहा है का कुछ भी है, लेकिन इस सौदे में जाना नहीं है, जाना नहीं है। अब दोनों ने सोचा क्या करे, किसको पूछे किसको पूछे। तो निश्चय बुद्धि बाबा के बच्चे कहा चलो बाबा के सामने चिट्ठी लिखो, बाबा जो जवाब देवे वो हमें करना है। मतभेद हो गया ना दोनों का, पत्नी कहे नहीं देना, वो कहे नहीं देना है, बिजनेस की बात है, अगर 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है बैठे बैठे हमें तो क्या नुकसान है। तो कहा कि नहीं चलो मतभेद हुआ ना, बाबा के सामने चिट्ठी रखो। तो बाबा के सामने चिट्ठी रखी दोनों ने, एक में हां लिखा, एक में ना लिखा, और वो चिट्ठी ये करके बाबा के सामने रख करके दोनों ने अमृत वेला विशेष योग किया। योग करके फिर जो उनके घर में पोती थी, उस पोती को बुलाकर कहा, ये दोनों में से कोई भी एक उठा कर ले आओ। छोटी बच्ची थी, पवित्र बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं, तो वो बच्ची ने जाकर के एक चिट्ठी उठाकर ला करके दिया। अब उसमें बाबा ने चिट्ठी में आया ना। अब भाई सोचा कि बाबा मना कर रहा है, नहीं करना चाहिए। तो फिर उसने सोचा ठीक है, नहीं करते हैं, बाबा की मनाई है। निश्चय बुद्धि थे, ये नहीं कि घड़ी घड़ी चिट्ठी जब तक हां ना आवे तब तक उठाते रहो, ये नहीं। कई लोग ऐसा भी करते, जब तक हां अपनी मर्जी का ना आए तब तक दूसरी बार जा, तीसरी बार जा, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। जो पहली बार आया ना, बाबा का जवाब है, समझो। तो जब बाबा ने मना कर दिया तो भाई थोड़ा सावधान हो गया कि बाबा मना कर रहा है, जरूर इसमें कोई राज होगा, है ना। तो बाबा की याद के बल से, उसके सहारे निश्चय बुद्धि होकर के चलेंगे, हमारी उसी में सुरक्षा है। तो जो है दूसरे तीसरे दिन वो पत्नी का भाई आया और उसके साथ कोई उसका दोस्त आया। वो दोस्त कोई बैंक में होगा, कोई मैनेजर होगा, पता नहीं क्या, कहीं जा रहे थे तो रास्ते में खड़े हुए। तो रास्ते में खड़े होकर के जब उनके घर में आए कि भोजन करके हम आगे जाते हैं, तो परिचय किया कि भाई ये मेरा दोस्त है और ये बैंक में है। तो उसके वो भाई को लगा मैं पूछूं, इसको तो मालूम होगा कायदे, सरकारी कायदे मालूम होगा। तो उसने उस भाई से पूछा कि भाई आप तो बैंक में करते हैं, अगर इस तरह का विदेश का पैसा आए तो कोई हमसे मांगे तो क्या करना चाहिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, अगर 5% एक्स्ट्रा हमें दे रहा है तो भी हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो वो भाई ने कहा अच्छा विदेश का पैसा कैसे आया है, बोले चेक से आया है, ऑफिशियली किया तो चेक से आया है। कहा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कहा क्यों, उसमें क्या नुकसान है? तो कहा चेक के ऊपर तो आपका नाम है, अब जिस दिन ये चेंज कराएगा तो आपका नाम ही जाएगा और जो है आपके ऊपर रेड पड़ सकती है। माना मैं तो पूरी बात नहीं समझी, लेकिन उसने कहा कल को आपके नाम वहां सरकार में जाएगा, सरकार के लोग आकर के आपके घर पर रेड डालेंगे और फिर आपको जेल में जाना पड़ेगा। तो वो भाई की आंख खुली कि हम तो वो 5% के लालच में जा रहे थे। देखो सुरक्षा कवच क्या है, याद। याद कैसे सुरक्षा कवच बन जाती है, कैसे सुरक्षित रखती है, इसलिए सबसे पहले किसको याद करो, बाबा को। इन्होंने बाबा के सामने चिट्ठी रखी ना, तो जब बाबा के सामने चिट्ठी रखी तो भगवान सही तरीके से गाइड करता है। बाबा की याद हमारी सुरक्षा न करे ये हो नहीं सकता है। बाबा को जो लगन से याद करते हैं, जितनी लगन से याद करते हैं, बाबा भी उन अनन्य बच्चों का ख्याल रखता है। उसको किसी भी तरीके से हानि पहुंचने नहीं देता है, है ना। तो इसीलिए कभी भी जीवन में कुछ भी हो तो क्या करो, बाबा को याद करने बैठो। याद करेंगे बाबा टचिंग देगा, ऐसे टचिंग अगर हमें कैच नहीं हो सकती है, बाबा के सामने चिट्ठी रखो, बार बार नहीं, एक ही बार रखने का, बार बार नहीं रखने का, है ना। कई चालाकी करते हैं तो बार बार रखते हैं, तो इसको निश्चय बुद्धि नहीं कहा जाता है। एक ही बार जो आएगा बाबा सही जवाब देगा, उसको सही मानना, क्योंकि उसके पीछे का राज समय खोलेगा कि क्यों बाबा ने मना किया, ये समय खोलेगा। अब देखो उसके घर में वो बैंक वाला व्यक्ति जिसको जानते नहीं पहचानते नहीं, वो कैसे भगवान ने भेज दिया उसका मन का संकल्प दूर करने के लिए, लेकिन उसने आज्ञाकारी बन करके नहीं, बाबा ने मना किया है। शांत रहो अभी। तो जब शांत रहे तो कहा एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए, हमें तो मालूम ही नहीं था कि भाई जेल भी हो सकती है ना। तो देखो बाबा को याद किया, चिट्ठी रखी बाबा के सामने, बाबा ने ना किया, आज्ञाकारी बन करके उसका पालन किया। तो बाबा के याद हमारे लिए जैसे एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच प्रैक्टिकल लाइफ में बन जाता है। और बाबा अपने आप वो व्यक्ति को भेज देगा समय पर, और समय पर वो रहस्य खोल करके चला जाएगा। उसको पता नहीं चलेगा कि मैंने कौन सा राज इसके लिए खोला, लेकिन भगवान उनके मुख से ऐसी बात बुलवा करके जाएगा जो आपके लिए सिग्नल होगी, और आप उस समय बाबा का थैंक्स मानेंगे कि थैंक्स बाबा, आपने हमको बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया। 10 जगह फोन करते थे, इधर उधर फोन करते थे तो क्या होता था, कई लोग सोचते हैं भले ना वो फंसे हमारा क्या जाता है, दुनिया में ईर्ष्या तो होती है कि नहीं होती है, तो कोई तो 10 जगह पूछने जाएंगे कौन हमारा शुभ चिंतक है कौन नहीं है, कौन ऊपर से खाली दिखावा करता है कौन नहीं कर, हमें थोड़ी पता चलता है। लेकिन भगवान को शुभ चिंतक अपना बना दो, हर चीज बाबा को याद करके बाबा के सामने रख करके पूछो तो देखो बाबा कैसे मदद करता है, और ऐसी मदद जो आप जीवन भर के थैंक्स बाबा बहुत बड़ी परीक्षा में आपने पास कर दिया हमें। तो एक तो दुआओं की शक्ति, दुआएं कैसे प्राप्त हो गई उसमें डबल हुआ, एक तो बाबा की याद, दूसरा आज्ञाकारी बनने से दुआएं मिली। तो आज्ञाकारी होकर के जो चलता है उसको भी परमात्मा दुआएं स्वतः मिल जाती है। तो डबल शक्ति हो गई, याद की शक्ति और दुआओं की शक्ति। तो डबल जहां होता है वहां सेफ हो जाता है ना। जैसे एक मकान हो, ये दीवार है जो हमें सुरक्षित रखता है, लेकिन अगर जैसे दुनिया में कई बार कई लोग दूसरी दीवार फायर वॉल उसको कहते हैं, वो फायर वॉल बना देते हैं, तो वो फायर वॉल हर रीति से कोई भी आग का सेक क्यों ना हो वो भी उनको क्या करता है, टच नहीं कर सकता, अंदर आ नहीं सकता है, फायर वॉल है ना। अग्नि प्रूफ दीवार ऐसी बनाई है जो अग्नि प्रूफ है। तो हर प्रकार की परिस्थिति में हमें सुरक्षित रखता ही है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे कभी भी कोई भी बात आए तो उस वक्त सबसे पहले कौन याद आए, बाबा याद आए। बाबा को याद करके बैठ जाओ, बाबा को साथी बना करके चलो, बाबा को जैसे सदगुरु के आशीर्वाद के नीचे दुआओं का हाथ जिसका हमारे ऊपर है ये महसूस करते हुए चलो, तो कभी भी कोई बात आपको छू नहीं सकती है। इतना आप महसूस करेंगे जैसे हम बाबा की गोद में छत्र छाया के नीचे सुरक्षित है। जैसे कहानियों में आता है कि बिल्ली के पुंगरे थे भट्टी में, चारों तरफ आग होते हुए भी क्या हुआ, सुरक्षित थे। तो इसी तरह दुनिया के अंदर अब अनेक प्रकार की परिस्थितियों की आग बढ़ने वाली है, और इतनी ये आग फैलती जाएंगी कि आज दुनिया के लोगों की हालत देखो क्या है, मानसिक असंतुलन आ जाता है। इसीलिए बाबा कहे तुम बच्चे संतुलन में रहो। मानसिक संतुलन हमारा बिगड़ना नहीं चाहिए। मानसिक संतुलन बिगड़ता है जब हम व्यर्थ चलाते हैं, नेगेटिव संकल्प चलाते हैं। जितना व्यर्थ और नकारात्मक विचार चलेगा, इतना आंतरिक हमारी स्थिति का संतुलन है बिगड़ जाता है। और जिसका संतुलन ही बिगड़ गया तो क्या होगा, शिकार बनना स्वाभाविक है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते जो बैलेंस में चलते हैं ना, उसको ब्लेसिंग मिलती है और वो ब्लिसफुल लाइफ का अनुभव करता है। अर्थात बैलेंस माना संतुलन से जो चलता है उसको ब्लेसिंग मिलती है, अर्थात दुआएं मिलती है, और वो ब्लिसफुल लाइफ यानी आनंद की स्थिति का अनुभव करता है। दुनिया रो रही होंगी, परेशान होंगी, और ये खुशी में आनंद में झूम रहा है। इसीलिए बहुत सुंदर किसी ने कहा कि परिस्थिति रूपी बादल कैसे भी आ जाए, समस्याएं रूपी बादल कितने भी घने क्यों ना हो, लेकिन उस घने बादल के नीचे भी आनंद की स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। सोचो जैसे दुनिया के अंदर घने बादल हो, लोग बाहर निकलने से डरे, लेकिन जो मस्त होता है वो उस बारिश में भी क्या करता है, आनंद का अनुभव करता है। तो दुनिया के अंदर अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियों के घने बादल हैं, अनेक प्रकार के समस्याओं के घने बादल हैं, काले बादल हैं, लेकिन जिसके साथ परमात्मा दुआएं हैं वो आनंद की स्थिति का अनुभव कर रहा है, आनंद में रहता है। उसको कभी कोई नकारात्मक विचार छू नहीं सकता है। नहीं तो आज देखो कि कुछ भी हो, छोटा सा भी होगा तो भी क्या होगा, नकारात्मक विचार चलना आरंभ हो जाएगा। अरे क्या हो गया, कैसे हो गया, अनेक प्रकार के व्यर्थ चिंतन शुरू हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम सदा श्रीमत का हाथ पकड़ो, बाबा के छत्र छाया के नीचे अपने आप को अनुभव करो, अर्थात बाबा की याद में रह करके उसके छत्र छाया के नीचे अपने आप को महसूस करो। जब ऐसा महसूस करेंगे तो महफूज रहेंगे। जो ये महसूस ही नहीं कर सकता है तो महफूज कैसे रहेंगे। कहते हैं ना, ईश्वर तेरी छत्र छाया में हम अपने आप को कितना महफूज महसूस करते हैं। गीत है ना बाबा का, बहुत सुंदर बाबा का गीत है कि महफूज अपने आप को महसूस करो, सुरक्षित महसूस करो, और ऐसा लगेगा जैसे हम हल्के होकर के चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। इसीलिए बाबा हमेशा यही कहते बच्चे समय अनुसार अभी उड़ता पंछी बनो। बातें इतनी आएंगी आप उड़ जाओ, बातें नीचे रह जाएंगे, आप ऊपर से क्रॉस कर लो, है ना, तोड़ती कला में जाओ। तो ऐसे स्थिति हमारी हो, आंतरिक पावरफुल स्थिति हो, कि ये शक्तिशाली स्थिति हमें नीचे की बातों को महसूस नहीं होने देती है। लेकिन परमात्मा श्रीमत का हाथ पकड़ते हुए हम जैसे उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जाओ, है ना। इसीलिए कहा कि क्या बनना चाहते हैं जीवन के अंदर, जीवन के अंदर आप हनुमान बनना चाहते हैं या अर्जुन बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, हनुमान बनना चाहिए या अर्जुन बनना चाहिए। अर्जुन को लड़ना पड़ा, युद्ध करना पड़ा और हनुमान जी लंका भी जला करके आगे उड़ते हुए है ना। तो महावीर बनना है या अर्जुन बनना है, लड़ते रहना है, क्या करना है? महावीर बनो, उड़ते रहो। इसलिए बाबा कहे उड़ते रहो, उड़ाते रहो। युद्ध क्यों करें हम? युद्ध में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो युद्ध नहीं करना है, लेकिन बाबा के उड़न खटोले में जैसे बाबा उड़ाते हुए आगे ले जा रहा है हमें, बहुत सुरक्षित रीति से हमें कोई भी प्रकार का दुनिया का सेक लग नहीं सकता है। इतना सुरक्षित अपने आप को बाबा की छत्र छाया में महसूस करो। बाबा कई बार जैसे मुरली में कहते हैं, मैं अपने नैनों के उड़न खटोले में आपको ले जाता हूँ। कितना प्यार करता है बाबा। उस प्यार को अनुभव करो, महसूस करो। जो उस प्यार में चलते हैं, उस प्यार के लगन में मगन रहते हैं, उसको कोई भी बात इफेक्ट नहीं कर सकती है, छू नहीं सकती है, हलचल में नहीं ला सकती है, अस्थिर नहीं कर सकती है, है ना। और जो अस्थिर हो गए फेल हो गए, अस्थिर रहे वो पास हो गए, जो हलचल में आ गए फेल हो गए, है ना। तो हलचल में नहीं आना है, एकदम स्थिर बुद्धि, है ना, स्थित प्रज्ञ। इसलिए कहा जो स्थित प्रज्ञ है, स्थिर बुद्धि है, उसको जैसे भगवान अपनी गोद में समा कर रखते हैं, तो अभी ये अनुभव करने का समय आ रहा है। क्योंकि दिन प्रतिदिन जब पेपर बढ़ते जाएंगे तभी तो अनुभव करेंगे। जब अच्छे दिन है तो क्या अनुभव किया, लेकिन जब विपरीत बातें आए तभी तो अनुभव भी करना है ना। कि जैसे बाबा की गोद में हम सेफ है, तो ऐसा अपने आप को महसूस करते हुए चलते चलो, उड़ते चलो। और बातें सारी नीचे की नीचे रह जाए, वो बातों की सेक तक हमारे तक न पहुंचे, है ना। ऐसे बाबा के उड़न खटोले में बैठ करके उड़ते हुए क्या करो, मंजिल पर पहुंच जाओ। संपूर्णता की मंजिल जो है, उस संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचो। क्योंकि अगर नीचे की बातों के हलचल में आ गए तो मंजिल पर पहुंचना असंभव महसूस होगा। इसीलिए अब शॉर्टकट, जैसे लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट में चले जाओ ऊपर तक, मंजिल तक, तो दूसरी बात है, चढ़ने में तो सांस फूलेगी, थकावट होगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन लिफ्ट में कुछ नहीं। तो बाबा की याद की लिफ्ट, दुआओं की लिफ्ट, ये लिफ्ट ऐसी है, जिनके पास ये लिफ्ट है उसको कभी भी न सांस फूलेगी, न तकलीफ होगी, न मेहनत का अनुभव करेंगे, लेकिन मोहब्बत में जैसे उड़ते जाएंगे। तो मेहनत वाले बनना है, मोहब्बत वाले बनना है, मोहब्बत वाले बनना है। तो ये भट्टी में 3 दिन क्या करेंगे, बाबा के प्यार में समाए रहो, बाबा के प्यार में उड़ते चलो, उड़ाते चलो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।
मेरे बाबा।